कष्ट पा रहे हैं वो केके के कारण। केके ने वास्तव में बड़ा क्रूर कर्म किया है। लक्ष्मण जी महाराज जब इस प्रकार से बोल रहे थे तो राम जी महाराज ने कहा कि अरे लक्ष्मण क्या बोलते हो, नतेम्बा मध्यमा तात गर्भितव्या कदाचन है, केके के लिए कभी ऐसे निंदनीय शब्द मत कहो। केके की क्यों चर्चा छेड़ी, तुम पहले भरत की बात कर रहे थे, मैं भरत की चर्चा को बड़े प्रेम से सुन रहा था। भरत है वो ऐसा है, प्रियवादी है, मधुर है, त्यागी है, सुखों का त्याग किया हुआ है, ये जो तुम बातें कर रहे थे मेरा मन बहुत प्रसन्नता से भरत की कथा में लगा हुआ था, लेकिन तुमने भरत की कथा को छोड़ करके और बीच में केके के लिए जो कुछ कहा उसकी जो निंदा की मुझे बहुत बुरी लगती है। आप तो उसी इक्ष्वाकुनाद भरत की कथा कहो, भरत की कथा कहो। अरे भाई क्या बताऊं लक्ष्मण, मेरी बुद्धि वनवास के अंदर भरत के प्रेम के अंदर तो जाने कहां की कहां बह गई, भरत के प्रेम की नदी में मेरी बुद्धि बह गई। मेरे और भरत के बीच में भरत के मन में बड़ा प्रेम है, मेरा प्रेम तो उस भरत के प्रेम के सामने बौना हो गया, छोटा हो गया। मैं जब भरत के उन मधुर वाक्यों को याद करता हूँ तो मन में प्रसन्नता होती है और ऐसा सोचता हूँ कि बस वो बात मेरे हरदम कानों में गूंजती रहे, कितना प्रेम से बोला था, उसके वचनों में अमृत की वर्षा हो रही थी। लक्ष्मण कब भरत से मिलूंगा, कभी कभी मन में आती है कि भरत को बुला लूं, कुछ दिन भरत भी सेवा में रहे। कभी मन करता है कि अयोध्या जाकर के भरत से मिलकर के वापिस आ जाऊंगा। कदा हम समेश्यामि, कब मैं जाऊंगा, कब भरत से मिलूंगा, कब शत्रुघ्न से मिलूंगा। शत्रुघ्ने वीरेण त्वया च रघुनंदन, और हे रघुनंदन अपने चारों भाई सब मिलकर के कब बैठेंगे इसका कोई पता नहीं है, बहुत याद आती है भरत की। ऐसे कहकर के राम जी महाराज वहां पर रोने लग गए, राम जी महाराज से टप टप आंसू बरसने लगे। इतने में ही मंदाकिनी नदी आ गई, फिर वे उस मंदाकिनी गोदावरी, मंदाकिनी तो चित्रकूट में ही रह गए, ये पंचवटी की जगह, या गोदावरी नदी आई, वहां पर वो ठंडा ठंडा जल था, उस ठंडे जल में उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद देवताओं के लिए और पितरों के लिए जल दिया। देखो नदी में जाते हैं ना तो यूं हाथ यूं जो देते हैं ना जल, ये तो देवताओं को जल देना होता है, लिया यूं अर्पित किया, और देवलिया यूं देना होता है, ये अपने पितरों का होता है, यूं लेकर के और यूं अंगूठे के और तर्जनी के बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते से जो जल दिया जाता है ये जल देना होता है पितरों का, ये पितरी मार्ग है, ये देवताओं का मार्ग होता है। तो पहले उन्होंने देवताओं को जल दिया, फिर अपने पितरों को जल दिया, और इधर जो है वो अपना स्नान वगैरह करके सारा आवश्यक कार्य करके सबके सब वहाँ अपनी कुटिया में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शंकर नंदी और उमा के साथ गंगा जी के वहाँ पर बैठे हुए हों, ऐसे इन तीनों की शोभा हो रही थी। आगे वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि एक बार की बात है, भगवान श्री राम गोदावरी में स्नान करके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अपनी कुटिया पर विराजमान थे। उस समय उन्होंने अपना आवश्यक कार्य सब प्रकार से सल्टाई लिया था, प्रातःकाल का जो कार्य करना है, तो वहां अकस्मात एक दिन शूर्पणखा आई। राम जी महाराज तो सीता को लेकर और लक्ष्मण को लेकर अनेक प्रकार की पुराणों की कथा कह रहे थे, शास्त्रों की कथा कह रहे थे, खूब सर्दी पड़ रही थी, तो वे कुटिया के अंदर बैठे हुए थे और शास्त्रों की चर्चा चल रही थी, दोनों जने आराम से उस चर्चा को सुन रहे थे। बाहर धूप थी, धूप होने के कारण, कुटिया की आड़ होने के कारण चौकी के ऊपर वे बैठे हुए शास्त्र चर्चा कर रहे थे, चकारे विविधा कथा। उस समय में राम जी महाराज से वो तो कथा संसक्त चेतस है, कथा के अंदर अपना चित्त लगाए हुए थे। देखो कथा कहने वाले को और कथा सुनने वाले को कथा में ही मन लगाने से उसको फल मिलता है। कथा के बाहर यदि इधर उधर मन जाता है तो वास्तव में वो कथा कहने के योग्य नहीं है। तो राम जी महाराज कथा में इतने मस्त हो गए कि कथा के बाहर उनका कहीं मन ही नहीं गया, कथा कह रहे थे। उधर वो राक्षसी आई, यूं ही आगे घूमती घामते वो राक्षसी आई, उसका नाम था शूर्पणखा। ये दशग्रीव रावण की छोटी बहन थी। उसने इंद्र से भी श्रेष्ठ सुंदर, कामदेव से भी सुंदर राम के दर्शन किए। राम का चेहरा था वो जगमगा रहा था, राम के नेत्र थे वो कमल के समान खिले हुए थे, और राम जी को एक बड़े मस्ती चाल में, बड़े मस्ती के साथ उसको देखा। जटा मंडल धारण कर रखा है और एक सुकुमार शरीर वाला है, और इसके एक बहुत बड़े राजा के से लक्षण है, ऐसा उसने देख लिया। और देख करके राक्षसी के मन में विचार आया कि इस राम को ही मैं अपना पति बना लूं। परंतु देखो कैसे राम उसको स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि राम का मुख तो बड़ा सुंदर था, ये बड़ी दुर्मुखी थी। राम है वो मध्य भाग से पतले थे और ये बहुत मोटी ताजी थी। राम है इनके मोटी मोटी आंखें थी, इसकी विकराल आंखें थी। राम के केश बड़े सुंदर थे, इसके केश तांबे के समान पीले पीले थे। राम बहुत सुंदर स्वरूप वाले थे, ये बहुत कुरूप थी। राम का स्वर बड़ा मीठा था, इसके स्वर में बड़ी कर्कशता थी, बड़ी डरावनी आवाज निकलती थी। राम जी तरुण थे और ये बूढ़ी थी। राम जी दयालु थे, ये बड़ी क्रूर थी। राम जी न्याय के अनुसार चलने वाले थे, ये अन्याय पर चलने वाली थी। राम बड़े प्रिय थे, ये बड़ी अप्रिय थी। किसी भी दृष्टि से राम की और शूर्पणखा की जोड़ी बैठती नहीं थी, तब भी उसकी बुद्धि में विकार पैदा हुआ और उस शूर्पणखा ने राम से कहा, ये बड़ी सुंदर जटा पहने हुए तपस्वी वेश में बैठे हुए एक भारिया के साथ बाण लिए हुए इस देश में कौन हो तुम? ये तो राक्षसों का देश है भाई, यहाँ तुम कैसे आए? तुम्हारे आने का कारण क्या है? कौन दिशा से आए हो? किस काम के लिए आए हो? कौन हो? किसने भेजा है? ये सब बातें राम जी के सामने शूर्पणखा ने कही। राम जी महाराज बड़ी सरल बुद्धि वाले थे, ऋजु बुद्धि तैयारी। राम जी बोलते तू कौन होती है भाई हमसे बात करने वाली? पर राम जी तो क्या बताएं, सरलता की मूर्ति। सरलता से राम जी ने सब बात कहते हुए कहा कि देखिए, अयोध्या के एक राजा दशरथ हुए हैं। दशरथ का पराक्रम इंद्र के पराक्रम से कम नहीं था। उनका मैं सबसे बड़ा लड़का हूं, मेरा नाम राम है। प्रायः बहुत लोग मेरा नाम जानते भी होंगे। और ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम लक्ष्मण है। ये मेरी सेवा में आया है। और ये मेरी पत्नी है, इसका नाम सीता है। पिताजी ने हमको वन में आने का आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने के लिए और माता का प्रिय कार्य करने के लिए मैं यहाँ वन में आया हूँ। मेरी इच्छा है कि पिताजी धर्म के अनुसार चले, मेरी इच्छा है मैं भी धर्म के अनुसार चलूं, तो सबका धर्म पालन करने के लिए मैं इस वन में आया हूँ। परंतु आप बताइए, आप कौन है? आप किसकी है? आप किसकी बेटी है और आप किसकी पत्नी है? आप कहाँ रहती है? देखो आपने ऊपर से तो बहुत अच्छा स्वरूप बनाया है, परंतु आप तो मुझे राक्षसी के समान मालूम देती हो। कौन हो आप? ये देखो कैसा राम जी ने शब्द कहा है, ये शब्द क्यों कहा कि तुम बड़ी सुंदर भी हो और राक्षसी के समान मालूम देती हो। माने ऊपर से तो तुम बड़े सुंदर हो, भीतर से तुम राक्षसी हो। वास्तव में तो ऊपर से भी राक्षसी थी, भीतर से भी राक्षसी थी, लेकिन यहां बताया राक्षसी प्रतिभासी में तुम मुझे राक्षसी मालूम देती हो। माने तुम्हारा भाव अच्छा नहीं है। इस बात को राम जी समझ गए। तब वो सूर्पनखा है वो देखने लगी कि देखो इन्होंने मेरे से मेरा परिचय पूछा है तो जो है बात करने का मौका मिला तो मैं भी इनको बोलती हूँ। वो कहने लगी श्वेताम राम तत्वार्थम, आप मेरे विषय में सुनिए, मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मैं वास्तव में शूर्पणखा नाम की राक्षसी हूँ। मैं चाहे जैसा रूप बना सकती हूँ और ये जो जंगल भयानक जंगल है इसमें मैं एक अकेली घूमा करती हूँ। सब प्राणी मुझसे डरते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, लंका के एक राजा हैं, उनका नाम रावण है। वे रावण कुबेर के छोटे भाई हैं और कुंभकर्ण के बड़े भाई हैं, विभीषण के बड़े भाई हैं। कुंभकर्ण का भी शायद आपने नाम सुना होगा, खूब नींद लेता है। विभीषण है वो बड़ा धर्मात्मा है, उसके द्वारा कोई राक्षसी कार्य होता नहीं है। रावण के और भी भाई हैं, खर और दूषण। ये दोनों भाई बहुत ताकत वाले हैं, सारा संसार जानता है। तो हम दो भाई और एक मैं उनकी बहन, हम तीनों के तीनों यहाँ जंगल में आए हैं। यहाँ हम रहा करते हैं, हमारे पास में बहुत से सैनिक रहते हैं। ये सारा जनस्थान दंडकारण्य ये सब जो है रावण के आदेश से हम लोग यहाँ रहते हैं। तो देखो मैं यहाँ सबको छोड़ छाड़ करके तुम्हारे पास आई हूँ। हे राम तुम बड़े श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम पुरुषोत्तम हो, मैं तुमको स्वीकार करती हूँ क्योंकि मैं अनेक प्रकार की शक्ति और विकृत रूप वाली है, विरूप वाली है, इसकी और तो हम देखने का भी मन नहीं करते। आपके लिए पत्नी रूप में रहना ही चाहते हो तो मुझे आप पत्नी बनाओ, मैं आपकी पत्नी योग्य हूँ। इसलिए आप विरूप और असती और कराला मन बड़ी कठोर स्वभाव वाली और बहुत दुबली पतली है ये, इसको तुम जो है यहाँ से हटा दो, अन्यथा मैं भी इसको खा जाऊंगी। खा जाने से इसका अभाव हो जाएगा, इसका अभाव हो जाने से फिर जो है आप मुझे स्वीकार कर लो। और यदि आप कहो तो ये आपका छोटा भाई लक्ष्मण है, इस लक्ष्मण को भी मैं खा जाऊं तो सीता भी मर जाएगी, लक्ष्मण भी मर जाएगा, फिर ये सारा का सारा दंडकारण्य ये आपका और मेरा हो जाएगा। और ये पर्वत है, यहाँ जंगल है, यहाँ विविध प्रकार के और ये प्रकृति का वातावरण है, इनके अंदर आप निर्भय होकर के विचरण करेंगे, कोई इसमें अपने को रोकने वाला नहीं है। भगवान श्री राम उसकी बात सुनकर के हंसे और हंस करके राम जी ने बड़ी मीठी वाणी में मुस्कुराते हुए शूर्पणखा से कहा, हे शूर्पणखे क्या बताऊं, मेरा तो अग्नि की साक्षी में विवाह हो गया। और जब अग्नि की साक्षी में विवाह होता है तो उसको आजीवन स्वीकार करना एक धर्म होता है, इसलिए मैंने इसको स्वीकार कर लिया। अब मैं ऐसे कैसे कहूं कि ये मर जाए और तुम आ जाओ, ये बिल्कुल मेरे लिए उचित नहीं है। और तद विधानाम तो नारीणाम सुदुखा सपत्मता, और तुम्हारी जैसी, हे भगवान तुम तो बहुत बड़ी स्त्री हो ना, तुम्हारी जैसी स्त्री यहाँ सीता के सामने सौत होकर के रहे ये तुम्हारे लिए बड़े कष्ट की बात हो जाएगी। इसलिए मेरे साथ तो देखो तुम्हारा बैठना संबंध बैठना कोई जो है सुगम मालूम नहीं देता और उचित भी मालूम नहीं देता। ये हमारे छोटे भाई है, ये बड़े शीलवान है, बड़े सुंदर है और अकृतदारश्च है, और इन्होंने अभी अपनी पत्नी को अपने साथ में भी नहीं रख रखा है। इनका नाम लक्ष्मण है, ये पराक्रम में बड़े श्रेष्ठ हैं और अपूर्वी भार्या चारथी तरुणा प्रिय दर्शन है। ये बहुत सुंदर स्वरूप वाले हैं, जवान भी हैं, तुम्हारे अनुरूप भी हैं। और यदि तुम स्त्री की तो यदि तुम जो है पति की इच्छा रखती हो तो भाई ऐसा तुमको अपूर्व पति नहीं मिलेगा, ऐसा अपूर्व पति मिलने वाला नहीं है, तुम्हारे बहुत अनुरूप है ये, तुम्हारे रूप के अनुसार तो लक्ष्मण ही पति बन सकते हैं। तो देखो हे विशालाक्षी, भर्तारम भ्रातरम मम, तुम यदि अपना भर्ता चुनते हो तो मेरे भाई को चुन लो, इसके पास तुम रहोगे तुम्हारे कोई सौत भी नहीं रहेगी और तुम बड़े श्रेष्ठ रहोगे। जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत के पास में सूर्य का प्रकाश हरदम रहता है, सूर्य की प्रभा हरदम रहती है, ऐसे ही तुम लक्ष्मण के पास में सदा रहोगे। राम जी ने ये बात कही तो राक्षसी ने राम जी को तो छोड़ दिया और वो लक्ष्मण के पास आई। लक्ष्मण के पास आकर कहने लगी, अरे लक्ष्मण, राम ने कहा तुम तो उससे भी बड़े अच्छे सुंदर स्वरूप वाले हो, तुमने ही अपना सुंदर स्वरूप रख रखा है, किसके लिए रखा है? भार्या हम वरवर्णिनी, मैंने तुमको अपनी तरफ से वर्ण कर लिया है, तुम हमारे पति हो, हम तुम्हारी पत्नी है, दंडकारण्य में आराम से विचरण करेंगे और तुम छोड़ो इस राम को भी छोड़ो और बाबा सीता को भी छोड़ो, तुम तो मेरे साथ आ जाओ। देखो पत्नी के रहते हुए कोई भाई पर इतना प्रेम थोड़ी करता है लक्ष्मण, चाहे तुम राम की कितनी सेवा करो, आखिर सीता के साथ जितना प्रेम करेगा उतना तुम्हारे साथ तो होगा नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ और फिर जो है दंडकारण्य में आराम से घूमो। तो लक्ष्मण जी ने भी खूब अच्छी तरह से हंसते हुए और मुस्कुराते हुए राम जी की ओर देख करके उसको जवाब दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे शूर्पणखा जी, आप तो बहुत ऊंचे कुल की हो, बड़ी श्रेष्ठ हो, ऊंचे विचार वाली हो, आप मेरे यहाँ कहाँ विवाह करने की बात कहने लग गए? मैं तो इनका दास हूँ, कहने के लिए छोटा भाई हूँ पर रहने के लिए तो मैं तो इनका दास हूँ। तो आप एक दास की पत्नी होगी तो आपका नाम दासी हो जाएगा, ये दासी होना तो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि मैं तो परवान हूँ, माने मैं तो इनका सेवक हूँ। इसलिए हे सुंदर कमल के फूलों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखे, देखो उपयुक्त के साथ ही सारा संबंध ठीक बैठता है, राम जी महाराज तो ऐश्वर्यशाली है और तुम्हारे पास भी अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, तुम दोनों का तुम मेल बैठ सकता है, परंतु मेरे साथ कैसे मेल बैठेगा? भार्या भव यवी ऐसी, एक बात है तुम इनकी स्त्री बन जाओ, तुम छोटी स्त्री बनो तो कोई भी हर्जा नहीं, छोटी स्त्री बन जाओ, बड़ी स्त्री न बनो तो न सही, छोटी स्त्री बन जाओ, परंतु तुम राम की स्त्री बनती हुई अच्छी लगती हो। और देखो तुम्हें नहीं कहा है कि ये सीता बड़ी विरूपी है, सीता है वो असती है, सीता है वो कराली है, सीता विकराल है, तुमने खुद नहीं कहा है? तो जब तुम इनके साथ विवाह कर लोगी तो त्वामे वैश्य भजिष्यति, फिर वो सीता के छोड़ करके तुम्हारे से ही वो प्रेम करेंगे, इसलिए तुम जो है वापिस राम के पास भी चले जाओ, क्योंकि मनुष्यों के अंदर राम से बढ़कर कोई भी सुंदर तुमको पुरुष मिलने वाला नहीं है, और इनके अंदर तुम भाव बनाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने जब ये बात कही तो उस शूर्पणखा को, मूर्खा को इस बात का तो पता नहीं कि आपस में हंसी कर रहे हैं, इस हंसी को वो तो पहचान ही नहीं, और वो और ज्यादा सुंदर बनने की चेष्टा करे और सुंदर बनकर के बात में लेकर के राम जी के पास फिर आई और फिर आकर के राम जी को कहने लगी, हे राम, देखो सीता को छोड़ दो, ये सीता किसी काम की नहीं है, आप तो मुझे स्वीकार कर लो, या तो आप मुझे स्वीकार करो, आप मेरा सम्मान करो, नहीं तो मैं अभी सीता को खा जाऊंगी। और जब सीता को खा जाऊंगी तब उसके बाद फिर तुमको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको पहले से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। निःसपत्ना यथा सुखम, क्योंकि मैं सौत होकर के रहना नहीं चाहती हूँ, सीता को तो मैं मार ही दूंगी, अतएव आप मुझे स्वीकार कर लो, नहीं तो सीता की अब मृत्यु होने वाली है। इतना कहकर के और वो ये सीता की तरफ झपट करके दौड़ी, और सीता तो बिचारी डर गई, अरे ये क्या राक्षसी है। तो राम जी महाराज ने उस समय विग्री है थोड़ा हुंकार कर ऐसा थोड़ा धमकाया, सूर्पनखा को धमका करके सीता को थोड़ा पीछा किया, और फिर लक्ष्मण से कहा, अरे लक्ष्मण क्यों इनके साथ में तुम हंसी विनोद करते हो, ये हंसी विनोद के लायक नहीं है। हंसी विनोद तो वहां हो जो बराबर के भाव समझते हो, ऐसे भाव समझने वाली क्रूर नारियां हैं, इनके साथ क्यों तुम इनको क्यों सिर चढ़ाती हो। न कार्य पश्य वैदेहिं कथंचित सौम्य जीवती, ठीक है ये तो सीता किसी प्रकार से अभी हमने बचा लिया, ये सीता को तो जीने ही नहीं देगी। असल में देखा जाए तो ये बहुत कुरूप स्त्री है स्वयं, और असती है और अत्यंत प्रमादी हो गई है, अतएव इस राक्षसी का ठीक इलाज करो। और देखो ध्यान दो, यूं इशारा कर दिया, मतलब एक वार के अंदर दो अवयव कटने चाहिए, नाक और कान। तो उसी समय में तलवार निकाली, लक्ष्मण जी ने तलवार निकाल करके उसके एक कान और नाक यूं काट दिया, कान भी काट दिया और नाक भी काट दिया। जो ये नाक और कान काटा वो सूर्पनखा वहां बहुत जोर से चिल्लाई, बहुत जोर से चिल्ला करके और वहां से दौड़ी दौड़ी गई। अब उसके खून है जहां टपकते गए टपकते गए टपकते गए, बहुत दूर तक नाद करते रही, सब जगह सब लोग सुनने लगे क्या बात है, इतना नाद कैसे हो रहा है। जैसे बरसात में मेघ बोलते हैं ऐसे वो सूर्पनखा का नाद हुआ, भयंकर नाद हुआ, और उसका जगह जगह खून जो है नाला सा बहने लगा। ततस्तु सा राक्षस संग संवृतम, फिर वो दौड़ी दौड़ी खर के वहां पर पहुंची, जो वहां पर जनस्थान में खर था उस खर के पास पहुंची। वहां जाकर वो यूं सिर पटक करके और खूब जोर से रोने लगी, जमीन पर पछाड़ खाने लगी। सारे राक्षस इकट्ठे हो गए और वो मुंह से मूर्छित हुए, कभी क्या बोले कभी क्या बोले। कब लोगों ने कहा, अरे तेरा केरा नाक कान किसने काटा, क्या बात हुई, बात तो बता। तो कहा कि दो राजकुमार आए हैं, दो राजकुमार आए हैं और दोनों राजकुमारों के साथ में एक जो है स्त्री है, और उन राजकुमारों ने मेरे नाक कान काटे हैं। खर ने फिर पूछा, खर ने पूछा कि अरे वो जो है सूर्पनखे क्या बात है क्या बात है, थोड़ा मुंह हटाओ, रोना धोना तो कम करो, तुम्हारे नाक और कान किसने काटे हैं हमारे खर के रहते हुए। अरे किसने काले सांप के बिल में बिना सोचे समझे हाथ डाल दिया, क्या वो भूल गया कि ये सांप डसेगा इसका जहर तुम्हारे अंदर चढ़ेगा। कौन ऐसा है कि जिसने जो है तलवार को अपने हाथ में यूं नचाने का काम चालू किया है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो खर के जीवित रहते हुए फांसी के अंदर अपना सिर दे दिया है और वो जीने की आशा करता है। यस्वाम आसाद्य पीतवान विषम उत्तमम, आज तो उस आदमी ने बड़ा जहर पी लिया है भाई जिसने तेरे नाक कान काटे, बताओ उसका नाम बताने की देरी है, वो कहाँ रहता है ये बताओ, किस दिशा में रहता है, किसने तुम्हारी दुर्दशा की है, किसी देवता ने की है तो बताओ, गंधर्वों ने की है तो बताओ, और किसी प्राणी ने की है तो बताओ, ऋषियों ने की है तो बताओ, तुम्हारा ये विकृत स्वरूप कौन कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा देवताओं में ताकत है, परंतु देवताओं को पता है कि ये खर के बहन है, फिर देवता भी तुम्हारे नाक कान नहीं काट सकते। इस संसार में कौन है कि जो नाक कान काट करके जीवित रह जाए। यदि इंद्र है तो तुम साफ नाम ले आओ, घबराओ मत, इंद्र से तुम डरती होगी, मैं नहीं डरता हूँ, मेरे पराक्रम के सामने इंद्र भी ठहरने वाला नहीं है। आज मैं तुम जिसका नाम लोगे उसके प्राण ढूंढ करके ले आऊंगा, चाहे वो समुद्र में भी गया हुआ हो और चाहे वो कुछ भी किया हुआ हो। सलिले क्षीरमासक्तम निष्पिपन्निव सारस है नियतस्य मया संख्ये सर संकृत मर्मण है। उसके मर्म स्थलों के ऊपर में बाण लगा लगा करके उसका खून सोख लूंगा और सारी पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा आज मैं जो है ये मांस और खून इनका जो है कीचड़ मचा दूंगा। कोई सेना लेकर के भी आया हो तो कोई बात नहीं भाई, ये जितने पक्षी हैं इनके खाने का पूरा इंतजाम हो जाएगा, मांस और खून पीने का खाने का इंतजाम हो जाएगा, तुम बताओ। लेकिन मैं समझता हूँ देवताओं के विचारों की इतनी ताकत नहीं, गंधर्वों को तो नाचने गाने के अलावा दूसरा काम नहीं, पिशाच तो मेरे सामने यूं डरते हैं, राक्षसों के तो हम ही स्वामी हैं, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है कि जो तुम्हारा अपमान कर दे इनमें से, इनके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। जिसने भी किया है बड़ा दुष्टता का काम किया है, बताओ वो कौन व्यक्ति है कि जिसने तेरे साथ ये कार्य किया है। शूर्पणखा ने अपना रोना धोना बंद किया, बंद करके और अब वो शूर्पणखा विशेषता से कहने लगी। शूर्पणखा कहती है तरणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनाम्बरौ। मैंने यहाँ दो राजकुमारों को देखा है, दो राजकुमार बड़े सुंदर हैं, उनके रूप संपत्ति में कहीं पर भी कमी नहीं है, सुकुमार शरीर वाले हैं, कमल के समान खिले हुए नेत्र वाले हैं और इन्होंने काले मृग के चर्म को पहन रखा है, फल फूल खाने वाले हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं। ये दोनों पुत्र दशरथ के बेटा है, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है, दोनों ही गंधर्वों के समान अत्यंत सुंदर है, दोनों के शरीर के ऊपर राजकुमारों का सा चिन्ह दिखाई देता है, दोनों ही देवताओं के समान है, दोनों ही देवताओं से और दानवों से भी कभी पराजित होने वाले नहीं है। इनके साथ में एक जवान स्त्री है, सब आभूषणों से विभूषित है और सब प्रकार से वो रूप संपन्न है। वो मैंने स्त्री इन दोनों के पास में देखी थी तो ताभ्याम उभाभ्याम संभूये प्रमदाम अधिकृत्यताम। मैं उस स्त्री के कारण से ही आज मेरे नाक और कान काट दिए गए हैं। उस स्त्री ने मेरी तरफ देख करके इशारा किया इसके नाक और कान काट दो, तो उस समय मेरे नाक और कान काट दिए थे, मैं अनाथ हो गई, मैं इस लायक नहीं थी, तभी देखो मेरे नाक कान काटने के लायक बना दिया, ये मेरी अवस्था हो गई। अब मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप जो है यदि कुछ करना चाहते हो तो उस स्त्री को अभी मार दो, उस सीता को तुम मार दो, मारने पर उसका जो खून रहेगा उस खून को मैं पीऊंगी, तब मुझे शांति मिलने वाली है, ऐसे मुझे शांति मिलने वाली है नहीं, पहले आप सीता को मारो और सीता के मारने के बाद फिर आप उन दोनों राजकुमारों को मारो, उनका भी मैं खून पीऊंगी, तब जाकर मेरे नाक कान कटने का मुझे जो है आगे जाकर दुख कम होगा। खर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम प्रसन्न हो जाओ और देखो तुम ऐसा समझ लो कि वो तो मर गए हैं। ऐसे कैसे समझ लूं, मैंने उनको आंखों से देखा है, वे दोनों राजकुमार बहुत बलवान हैं। कुछ भी हो वो बलवान होंगे लेकिन वो मेरे से युद्ध नहीं किए ना तब तक बलवान है, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। और अभी देखो मैं तुम्हारे साथ में 14 बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ राक्षसों को भेजता हूँ, पहले 14,000 नहीं भेजे, पहले केवल 14 ही भेजे, ये 14 राक्षस है इनको तुम साथ में ले जाओ और उनको बताओ ये 14 है ये अपना आप इनको पूरा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। 14 राक्षस सबके सब यहाँ से जाओ और शस्त्र संपन्न रूप संपन्न काले मृग का चर्म पहनने वाले दो मनुष्य दंडकारण्य में एक स्त्री के साथ आए हैं, तुम उस स्त्री को मार दो क्योंकि दुर्वृत्ताम उसका चरित्र अच्छा नहीं है, और ये मेरी जो भगनी है उसको ले जाकर इसको उस समय में उसका उसका जो है खून पिला देना, और उसके खून पी लेने के बाद फिर मेरा एक मनोरथ और है कि दोनों भाइयों को मार देना और दानव भाइयों को मारने के बाद में उनका भी खून इसको पिला देना, ये मेरी आज्ञा है। तुम क्यों, तुम लोगों पर मैं पूरा भरोसा करके तुमको भेज रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे आदेश में किसी प्रकार का कोई उल्लंघन हो। तुमको ये कार्य अभी जाके करना है और शूर्पणखा के सामने ही करना है। यम प्रहिष्ठा मुदिता, देखो ये बहुत प्रसन्न होकर के लौट के आए। तीनों का खून पी करके इसके मन में जब प्रसन्नता होगी तभी मेरे मन में प्रसन्नता होगी। 14 बड़े बड़े राक्षस, बहुत बलवान राक्षस, उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, जो आप हमको आदेश देते हैं उस आदेश के अनुसार ही कार्य होगा। अब आगे आगे शूर्पणखा चल रही है, पीछे पीछे वे 14 राक्षस चल रहे हैं। 14 राक्षसों के पास सब प्रकार के शस्त्र हैं और वे बड़ी सावधानी से बड़े निडर होते हुए चले जा रहे हैं। चलते चलते जहाँ राम जी की कुटिया थी वहां उस कुटिया की तरफ शूर्पणखा ने उनको छाने छाने बताया।